अनीता जी अलग ही दुनिया में थी, मानव शौक था। कुछ देर वो हैरान परेशान सा अनीता जी को देखता रहा, फिर सर घुमाया और नज़र उनके हाथ में मौजूद अंगूठी पर जा टिकी। सोने की नई चमचमाती अंगूठी देखकर मानव एक बार फिर चौंक गया। आई, ये तूने कब ली? ली नहीं है, नित्या के लिए बनवाई है। नित्या के लिए बनवाई है, वो भी तूने? कब, कैसे, क्यों? मानव की आंखों की पुतलियां आश्चर्य से फैल गईं। बहुत वक्त हो गया, तब तो तू नित्या से शादी करने के नाम से ही चिढ़ जाता था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मेरी बहू नित्या ही बनेगी, और तभी से मैंने धीरे धीरे तैयारियां शुरू कर दी थीं। अनीता जी मुस्कुरा रही थीं, वो खुश थीं, जबकि मानव के होश उड़े हुए थे। आई, तू कब से मेरी शादी नित्या से करवाने की प्लानिंग कर रही थी? शुरुआत से, तू जानता है मुझे नित्या पहले दिन से तेरे लिए पसंद है। मैं तो तभी तुम दोनों का लगन करवाकर नित्या को अपनी बहू बनाकर हमेशा के लिए इस घर में रख लेती, लेकिन पहले उसका बाप आकर उसे ले गया, फिर इतना कुछ हो गया, और एक लंबे इंतजार के बाद आज मेरे मन की मुराद पूरी होने जा रही है, इसलिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। तो ये सब छोड़ना और ये बता कि तुझे नित्या के लिए अंगूठी कैसी लगी, उसे पसंद तो आ जाएगी ना? मानव की नज़र एक बार फिर उस अंगूठी पर चली गई और आंखों के आगे नित्या की पतली पतली छोटी गोरी गोरी उंगलियां आ गईं। लब अनायास ही मुस्कुरा उठे, शायद उसने नित्या की रिंग फिंगर में उस रिंग को इमेजिन कर लिया था। खूबसूरत है, पर आई प्लीज तू सामने से सगाई के लिए कुछ मत बोलियो, वरना उन्हें लगेगा कि हम कुछ ज्यादा ही बेसब्र हैं, उन्हें बात शुरू करने दियो। अनीता जी का मुंह बन गया। मैं तो कहूंगी कि बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब मैं जल्दी से जल्दी अपनी बहू को अपने घर लाना चाहती हूँ, आगे जो उन्हें ठीक लगे। अनीता जी की बात सुनकर मानव थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन यहाँ कुछ भी कहने का कोई फायदा ही नहीं था, इसलिए अब उसने उन्हें फ्री छोड़ दिया। कायरव ऑफिस चला गया था, इनाया रूम में अकेली लेटी हुई थी। उसका एक हाथ उसके बड़े हुए पेट पर था और वो माथे पर बल डाले कि नहीं ख्यालों में खोई थी। जो काम मैंने तुझे दिया था वो कैसा चल रहा है? कायरव के डेस्क पर एक फाइल खुली थी और स्पीड में उसके पेज पलटते हुए कायरव उन पर साइन करता जा रहा था। चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे, काफी बिजी लग रहा था। उसके सामने टेबल के दूसरे तरफ नितिन खड़ा था। कायरव का सवाल सुनते ही उसने सर हिलाया। सब बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा है जैसे तूने कहा था। जाल रेडी है, अंकल को हमने उस जाल में अच्छे से फंसा लिया है। लास्ट वन वीक से अंकल वहीं जा रहे हैं और उन्हें किसी पर शक भी नहीं हुआ। कायरव का साइन करता हाथ रुक गया। उसने नजरें नितिन की तरफ उठाई और गंभीरता से बोला, दैट्स ग्रेट, अब टाइम आ गया है अपनी आखिरी बाजी चलने की। आज जब शाम को वो निकलने वाले होंगे तब तुझे मेरा वो काम करना होगा, और ध्यान रहे, उन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए। डैड की आदत है, जब उन्हें कहीं जाने की जल्दी होती है तो वो किसी चीज पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें इसी बात का फायदा उठाना है, पहले उन्हें लेट करवाओ, फिर जब जल्दबाजी में निकलने की कोशिश करें तब उनके सामने वो पेपर्स लेकर जाना, वो बिना देखे ही उन पर साइन कर देंगे। मैं ऐसा ही करूंगा, तू टेंशन मत ले, सब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तूने कहा। नितिन चला गया। कायरव सीट की बैक से टिककर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गया। उसकी तीखी आंखें सामने डोर को घूर रही थीं और होंठों पर गहरी खामोशी पसरी थी। पता नहीं इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वो देखने में हद से ज्यादा सीरियस लग रहा था। सुबह से शाम हो गई थी, कायरव जल्दी घर जाने वाला था, लेकिन काम में ऐसा उलझा कि उसे जाने का मौका ही नहीं मिला। उसने इनाया को इन्फॉर्म कर दिया था और अभी भी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ रहा था। मिस्टर रायचंद भी कहीं जाने की जल्दी में थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उन्हें इस अर्जेंट मीटिंग का पता चला और अब वो भी बेमन से कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुके थे। मीटिंग शुरू हुई, मैनेजमेंट से जुड़े सभी लोग वहां मौजूद थे। कायरव न्यू प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहा था। ये वही प्रोजेक्ट था जिसके लिए वो जयपुर गया था, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला था। नितिन प्रेजेंटेशन दे रहा था। देखते देखते मीटिंग में डेढ़ घंटा बीत गया। सभी कन्विंस थे और कायरव के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि मिस्टर रायचंद को किसी बात में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस मजबूरी में वहां बैठे बेमन से सबकी बातें सुन रहे थे। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई वो तुरंत अपनी चेयर छोड़कर उठ खड़े हुए। कायरव ने नितिन को कुछ इशारा किया और वो तुरंत सामने रखी फाइल उठाकर मिस्टर रायचंद के पास आ गया। सर, इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए, तभी इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो पाएगा। मिस्टर रायचंद ने कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा और खींचते हुए बोले, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में लेकर आना। मिस्टर रायचंद काफी बेचैन और हड़बड़ी में नजर आए, जैसे उन्हें कहीं जाने की बहुत जल्दी हो। वो फाइल हटाकर जाने लगे, लेकिन नितिन फिर से उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सर, इट्स अर्जेंट, अगर अभी आपने साइन नहीं किए तो सब डिले हो जाएगा। लाओ दो, पेन कर देता हूँ साइन। मिस्टर रायचंद गुस्से और चिढ़ से भर चुके थे। झुंझलाहट में उन्होंने बिना कुछ देखे और पढ़े ही उन पेपर्स पर साइन कर दिए। आज उनका असिस्टेंट भी नहीं आया था, वरना पहले वही पेपर्स रीड कर लेता। नितिन ने जहां जहां बताया मिस्टर रायचंद हड़बड़ी में साइन करके चले गए। नितिन ने उस फाइल को हाथों में घुमाते हुए कायरव को देखा। उसके होंठों पर शातिर रहस्यमयी मुस्कान बिखरी थी। अपनी जीत पर वो इतरा रहा था, जबकि कायरव का चेहरा बिल्कुल सपाट था, उस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। कुछ देर बाद दोनों कायरव के कैबिन में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। थोड़ी देर पहले तक जो फाइल नितिन के हाथ में थी, अब वो कायरव के सामने डेस्क पर रखी थी और वो पेपर वेट को अपनी उंगलियों के बीच घुमाते हुए अजीब तरीके से उस फाइल को घूर रहा था। चेहरा अब भी भावहीन ही था। कैबिन में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नितिन ने कुछ देर इंतजार किया, फिर भी जब कायरव ने कुछ नहीं कहा तो उसी ने खामोशी तोड़ते हुए बात शुरू की। कायरव, अब आगे का क्या सोचा है तूने? इन पेपर्स का कब, कहां और कैसे यूज करेगा? जब करूंगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा। अभी बस तू इतना समझ ले कि बहुत बड़ा धमाका प्लान किया है मैंने, और जब वो धमाका होगा तो किसी को समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या और कैसे। सबके होश उड़ जाएंगे, और जिन्हें अपने गुरूर के आगे कुछ और नजर नहीं आता, उनका वो गुरूर कांच के महल जैसे एक झटके में कूटकर बिखर जाएगा। कायरव की आंखें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। अभी भी वो कुछ सोच रहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन तेरे डैड को इन पेपर्स की सच्चाई पता चली, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे तो भाभी की चिंता हो रही है, कहीं इन सब में वो ना फंस जाएं। वैसे ही अंकल उनसे पहले ही इतनी नफरत करते हैं, उन्हें मारने तक की कोशिश कर चुके हैं। अगर इन पेपर्स की सच्चाई उनके सामने आ गई, फिर वो कहीं भाभी को नुकसान ना पहुंचा दें, नितिन परेशान सा बोला। कायरव की आंखों के आगे इनाया का मासूम सा चेहरा आया और वो एकदम सीरियस हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार मैं किसी को इनाया की परछाई भी छूने नहीं दूंगा। उसकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, जिसमें किसी तरह की कोई कमी की गुंजाइश नहीं। डैड कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन इस बार मैं उन्हें इनाया को किसी तरह से टारगेट करने का मौका ही नहीं दूंगा। कायरव का कॉन्फिडेंस और जुनून देखकर नितिन ने क्यूरियोसिटी से सवाल किया, क्या करने वाला है तू?
कुछ तो करूंगा। फिलहाल के लिए तू बस इतना ध्यान रख कि ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए। अगर ये सच्चाई अभी बाहर आई तो सब कुछ खराब हो जाएगा और इनाया की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, और मैं इस वक्त उसे लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए इन पेपर्स की सच्चाई तब तक बाहर नहीं आनी चाहिए जब तक मैं ना चाहूँ। ओके, नितिन ने सर हिलाया और घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, तुझे घर नहीं जाना, भाभी वेट कर रही होंगी। जाना है, बस ये फाइल संभाल कर रख लूँ, उसके बाद घर के लिए ही निकलूंगा। तू भी अब घर जा, रेस्ट कर, मेरे वजह से तुझ पर वर्कलोड काफी बढ़ गया है। इतना भी नहीं बढ़ा है, नितिन मुस्कुराया। कायरव ने फाइल उठाई और उसे लॉकर में संभाल कर रख दिया। उसके बाद दोनों एक साथ ही ऑफिस से निकले, इस बात से अनजान कि कोई है जिसकी नज़र पल पल उन पर बनी हुई है। टू बी कंटिन्यूड।